चलिए, जो आखिरी चार आयतें थी सबक की, उसको सब मिलके तिलावत करें. हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. नहीं, कल के लेसन की आखिरी चार शुरू कर दें. أعوذ بالله سے سب دوبارہ شروع کریں ایک ساتھ. آپ لوگ سویٹنگ سے کریں ہاں. आप सबको भी मिलके पढ़ने की आदत नहीं मुझे लगता हुई है. ये भी एक ट्रिक टेक्ट होता है. और अकेले चलना आसान है, दूसरों को साथ लेके चलना मुश्किल है. बस दफा हम अकेले बहुत कंफर्टेबल ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हमें सबके साथ पढ़ने को कहा जाता है तो मुश्किल लगता है. तो ऐसे वक्तों में आप ये याद रखें कि ये भी जिंदगी का एक असूल है. बहुत ही अच्छी कोटेशन किसी ने मुझे भेजी थी एक मौके पर कि इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो गो अलोन, अकेले जा चलो. लेकिन इफ यू वॉन्ट टू वॉक फॉर, देन स्टे विद पीपल. यही टीम वर्क होता है. मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ खूबियां होती हैं, कोई तेज होता है कोई स्लो होता है, तो दूसरों के साथ चलना चाहिए. बहरहाल अब हम चलेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे सूरह लेसन के आखिरी हिस्से पे. हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दोबारा बच्चे की जुदाई का गम सहना पड़ा. अब बच्चे तो दूसरे थे लेकिन यूसुफ याद आ गए. और जो जुमले उनकी जुबान पे आए वो क्या थे, या असफा अला यूसुफ, हाय अफसोस मुझे यूसुफ पे. यही लफ्ज है असफा, जिसकी साथ लफ्ज यूसुफ है. इंट्रो में बताया था आपको कि यूसुफ का मतलब गम खाने वाला, यानी सैड, या जैसे इसको दुखी के मानों में आप नहीं कहेंगे, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि इतना दिल नरम है कि वो इंसान उस मौके पे अपने गम को छुपा नहीं पा रहा. यहां आप देखिए कि जो अल्फाज हैं, इन नमाज को बसी व हुस्न इलाल्लाह, इस पे बात करना चाहूंगी थोड़ी सी. क्योंकि सफा सबरुन जमील पे तो बात पहले हो गई थी. तो ये जो दो लफ्ज हैं, इन नमाज को बसी व हुस्न इलाल्लाह, बेशक मेरे गम का शिकवा और शिकायत तो अल्लाह पर है. एक लफ्ज है अशकू. अशकू वही लफ्ज है जिससे लफ्ज उर्दू में शिकवा है. ठीक है, मैं शिकवा करता हूं. और शिकवा एक ऐसी चीज होती है कि दिल में जो बात होती है ना वो जुबान पे आई जाती है. शिकायत के मानों में, कंप्लेन के मानों में. लेकिन जो बसी है ना, बस्सा से है. पुराने पाक में ये लफ्ज आता है, अल्लाह ताला ने फैलाए कायनात में बहुत सारे लोग, तो बस सफीहा, यानी इस कायनात में बहुत सारे मखलूकात को फैला दिया. तो बसी कहते हैं वो गम जिसको इंसान छुपाना चाहे लेकिन फिर भी लोगों को पता चल जाए. जिसको आप कह लेंगे कि कह सकते हैं कि मैं जितनी भी कोशिश करूं लेकिन मेरे हाल की खबर लोगों को हो ही जाती है. तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपना गम छुपाना चाहते थे लोगों से, इसीलिए आप देखिए कि बच्चों से दूर होके अकेले में आके अल्लाह से दुख सुख कर रहे हैं कि अल्लाह अब लोगों के सामने तो बहुत मजबूत बनाओ. और ये हकीकत में एक बंदा मोमिन की तस्वीर होती है. قرآن پاک میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ مومن کیسا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے بیچ میں بہت اسٹرانگ دکھتا ہے. حرس میں حق کو باطل تو فولاد ہے مومن, ٹھیک ہے, دوسروں کے بیچ میں بہت اسٹرانگ محسوس ہوتا ہے, ہمت دلاتا ہے, لوگوں کو جرت دیتا ہے, کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں. بڑے سے بڑا غم بھی اس کے اوپر پڑتا ہے نا تو وہ لوگوں کو ایسے شو کرتا ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس اوکے, نو پرابلم. لیکن جو ہی وہ اپنے رب کے سامنے آتا ہے تو یا کنا بدو و یا کنستعین بندگی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. پھر اس وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ میں اس وقت دنیا کا سب سے مجبور اور کمزور شخص ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, میں جو بھی کرنا چاہوں میں وہ کر نہیں پاتا, میرے لیے کچھ بھی ممکن نہیں. اور یہ کیفیت زندگی میں آتی ہے. یہاں تو یعقوب علیہ السلام کی ہے اور یعقوب کا غم ذاتی غم تھا, ان کو اولاد کا غم ملا اور ان کی زبان پہ یہ الفاظ آ گئے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے راستے میں اس طرح کے غم ملے کہ آپ کی زبان پر بھی کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے. اگر آپ نے دعائے طائف کے نام پر ایک دعا جس کو دعائے مستضعفین بھی کہا جاتا ہے, کمزوروں اور بیچاروں کی دعا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا طائف کے دن مانگی تھی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت میں سب سے مشکل دن کون سا آیا. مکی دور کی یہ بات ہے, یعنی کب آپ کو لگا کہ بس یہ تو اب بہت ہی زیادہ تکلیف کا دن ہے, تو آپ نے کہا کہ طائف کا دن میرے لیے بہت مشکل تھا. آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ پاؤں میں جوتیاں بھی چپک رہی ہیں خون کے ساتھ, پردیس بھی ہے, اور جو آپ میں سے جا چکا ہو شاید 150 سے 200 کلومیٹر کے اراؤنڈ مکہ سے طائف ہے. آج بھی گاڑی میں جب گئے تو 2-2.5 گھنٹے لگے, اور وہ آپ بائی فٹ گئے تھے اپنے زید بن خارس کو ساتھ لے کر, اور سواری ہو بھی تو بھی بہت لمبا سفر ہے اور آگے سے کوئی اچھا رسپانس بھی نہ ملا. تو اس وقت آپ کی زبان پہ یہی جملے تھے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی. اے اللہ, میں تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمزوری اور اپنے وسائل کی کمی کا, اور لوگوں کے سامنے جو میری توہین ہوئی ہے, اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے. یہ دعا الحمدللہ کتاب و دعا کے ناطے سے بھی اور الگ سے بھی میں نے پوری پڑھائی ہوئی ہے. آپ اگر اس کا زیادہ بہتر لے لیجئے تو بہترین طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لے کے چلیں گے آگے کہ کس طرح سے انسان جب اللہ کے راستے میں ستایا جائے تو پھر اس کو کیا کہنا چاہیے, لوگوں کو دکھ سنائے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ جو انسان کے لیے بڑا ہوتا ہے نا, دکھ میں انسان اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ لوگ جن کو لوگ بڑے لگتے ہیں نا, جو عام زندگی میں لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, انہی کی خوشی, انہی کے غم, انہی کی ناراضگی, انہی کی رضا, تو وہ دکھوں میں ہمیشہ دوسروں کو اپنا دکھ سناتے ہیں. اور وہ دوسرے کوئی غیر نہیں ہوتے, ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں, اپنے رشتوں کی شکل میں ہی ہم دیکھتے ہیں ان کو. لیکن جس کو اللہ بڑا لگتا ہے, جس کا دکھ سکھ, جس کا سب سے بڑا ہم اور غم کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو, تو وہ تو کبھی بھی ایسے وقت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی طرف نہیں جانتا جا سکتا. دکھ اور سکھ ہی دو وقت ہوتے ہیں جس میں انسان کو اپنی اصل پتہ چلتی ہے. لکھیے ذرا, میں اصل میں کیا ہوں, میرا اللہ کی نظروں میں کیا مقام ہے. کبھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا؟ ہر ایک کیا آتا ہے, مجھے تو بہت بہت زیادہ اس چیز کا دھڑکا رہتا ہے کہ کبھی ایک دفعہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یا اللہ کی نظروں میں میں کیسی ہوں. ایک تو یہ نا کہ بندہ اللہ کے بارے میں سوچے, یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن جب اللہ بندے کے بارے میں سوچے تو یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. تو اس وقت مجھے وہ حضرت موسیٰ کی بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ انت فی السمائی ونحن فی الارض, اللہ تو آسمان پہ ہے اور ہم زمین پہ ہیں, کیسے پتا چلے کہ تم مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سائنس بتائے تھے. اسی طرح ہر ایمان والے کے دل میں اس چیز کا دھڑکا ہونا چاہیے کہ میرا مقام اللہ کی نظروں میں کیا ہے. تو اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ دکھ اور سکھ کے وقت پہ کھلتا ہے. عام حالات میں ہم بہت ساری مختلف قسم کی چیزیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جس کے سہارے میں ہمیں یاد پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کتنے پانی میں ہوں, लेकिन जब दुखों का पानी पड़ता है ना, तो इंसान के ऊपर से सब नकली रंग उतर जाते हैं। उस वक्त फिर इंसान अगर हकीकी मोमिन है तो सिबगत अल्लाह ही वमन अहसन मिन अल्लाह की सिबगा, उस वक्त वो अल्लाह की तरफ झुक जाता है। हमारे लिए सारे किस्से में अमल की बात यही है कि हम अपने हालात को बेहतर करें। दुख हो या सुख हो, अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक बंदे को उस दुख में अल्लाह की मदद देता है। हमारी मुश्किलात क्यों नहीं हल होती? हम क्यों अपनी मुश्किलात के लिए फिर दूसरों के पीछे फिरते हैं? क्योंकि हमारा ताल्लुक बिल्ला कमजोर होता है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो हमारे दिलों में हकीकत में अपनी सच्ची मोहब्बत डाल दे। जज़ाकअल्लाह खैर, इतना आज क्या था, बागे सबक पे चलेंगे और इस चीज को जाने ना दिया करें। ये आपके और मेरे लिए बड़ी अहम चीज होती है। पूरा कुरान भी पढ़ जाएंगे लेकिन अल्लाह के साथ आपका मामला ना हो। और पता कब चलता है? अनयूजल हालात में, स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो, दुखी हो, वक्त की कमी का एहसास है, या जो होगा देखी जाएगी, जो होगा देख लेंगे। जो बंदा कहता है ना, जो होगा देख लेंगे, उसका मामला क्या है? कोशिश कर लिए, अब जो नहीं हो सका तो फिर अल्लाह कर देगा। और जो आखिरी वक्त तक कहते अभी ये नहीं, अभी वो नहीं, अपनी जिंदगी में हम कई लम्हों पे सोचते हैं। इवन जैसे टेस्ट आप देते हैं, यहां आते हैं ना आपके टेस्ट के लिए, आप पढ़ें, रोज का सबक रोज पढ़ें, ग्रुपिंग में सुनाएं, अपनी वर्कबुक में लिखें, फिर ऑफ कोर्स अगर आपका कल टेस्ट है तो आज जाके उसको रिवाइज करें। उसके बाद सुबह आते वक्त क्या सोच, अपने दिल को चेक किया करें, हौल रही हूं, हौला रही हूं, परेशान हूं, या ये कहती हूं अब जो होगा अल्लाह के ऊपर सपोर्ट। अगर पहली कैफियत है ना, तो आपने अपना मामला अपने हाथ में रखा हुआ है। आप खुद को फील समझ रही हैं, बाहर नहीं पता चलता लेकिन असल में ऐसे ही होता है। और अगर आप कहती हैं जो मेरे से हो सकता था ना, मिसाल है कल अनयूजल हालात थे घर में, आज सुबह टेस्ट था, आप कल तैयारी नहीं कर सकी, इसको भी अल्लाह की देन समझे। यानी जब तक अल्लाह के साथ खुश नहीं होंगे हमें सुकून और चैन नहीं आएगा। और जो इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहता है, कोई कमी ना रहे मेरी जिंदगी में, ये ना वो ना, तो वो जन्नत तो फिर इस दुनिया में नहीं बननी, वो तो आगे जाके बनेगी। और अल्लाह ताला हम सबको उस जन्नत को पाने वाला बना दे। एक छोटी सी बात जहन में आ गई, और वो क्या है कि दूसरों के सामने क्यों नहीं रोए याकूब? अकेले में जो रो रहे हैं तो दूसरों के सामने क्यों नहीं रोए? इसलिए कि जब बंदा दूसरों के सामने रोता है ना तो हल्का पड़ता है। लोग शुरू में आपके आंसू पोंछेंगे, बड़े खुश होंगे, कहेंगे देखा आज उसने मुझसे अपने दिल की बात की, फिर बात करते हुए रो भी पड़ी। एक हफ्ते बाद फिर कोई मसला आ गया, फिर उससे बात करेंगे ना, तो वो एक्सपेक्टेड होगा क्योंकि आप उससे अपनी दुख की बात करती हैं, आपने आज फिर सुना दिया। दो तीन बार जब ये मामला हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि लोग इरिटेट होंगे आपसे, आपका फोन नहीं उठाएंगे उस वक्त, क्योंकि उनको लगेगा कि अब आपने अपना दुख सुनाना है, हो सकता है वो उसका इलाज ना कर सके और उनको परेशानी हो। फिर एक वक्त आता है कि लोग आपसे जान छुड़ाते हैं, ये घर आएंगी तो मुझे भी दुखी कर जाएंगी, ये परेशान है घर में। आप देखिए कोई एक दुखी बंदा होता है ना, सारे घर का माहौल बदल जाता है। वो एक बड़ों से बात सुनी हुई है कि हंसता बच्चा सबका, रोता बच्चा माँ का, ये कैफियत है। दुनिया में लोग हमें सिर्फ उस वक्त तक एंटरटेन करके खुश होते हैं जब हम उनको खुशियां देते हैं। जब हम दुख के नाम पे, बीमारियों के नाम पे, परेशानियों के नाम पे उन पे बोझ बन जाते हैं, तो ढके छुपे वो यही दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह इन पे रहम कर दे अपना, यानी इनको ले जाए। बूढ़ों को देख लीजिए, हम दिल के इखलास और मोहब्बत के साथ उनके साथ काम उनकी करते हैं, ख्याल करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि जब वो हमारे लिए किसी खैर का जरिया नहीं बनते, तो बस एक वो कह लीजिए कि अच्छी औलाद होने के नाते, या सब्र, या जिसको आप कह लीजिए कि माँ बाप का हक पहचानते हुए हम करते हैं, लेकिन खुशी हमेशा खुश लोगों में रह के होती है। तो इसलिए लोगों को बता के खुद को हल्का ना करें। इसी को अल्लामा इकबाल ने खुद ही कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और खुद ही क्या कि अपने आप को दूसरों के सामने हम कमजोर नहीं करना। नियत करें आज के बाद मैंने अपनी बीमारी किसी से शेयर नहीं करनी। बस लोग जरा उम्र बड़ी होती है तो फिर इधर दर्द, उठते दर्द, घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, नजला, जुकाम, खांसी। मैं कहती हूं आप जिस दिन बीमार हो उस दिन आप ज्यादा फ्रेश लगने की कोशिश करें कि किसी पे मेरा हाल ना खुले, और किसी कोई हाल पूछ ले तो फिर देखे जो हमारी लिस्ट खुलती है। हम अगले बंदे को डॉक्टर समझ लेते हैं कि अब इसको सारी बातें सुनाऊं ताकि फिर आगे से अगला भी फर्ज समझता है कि जब इन्होंने इतना वक्त लगा के अपना दुख सुनाया तो अब मैं कोई इलाज ना बताऊं तो ये तो बड़े दुख की बात है। फिर आप लोग भी टोटके बताते हैं ये किया था वो किया था, फिर हम उधर उधर चल पड़ते हैं। कम से कम लोगों के आगे खुले, कोई कह सके कि आज तक आपने अपना कोई दुख हमारे सामने नहीं शेयर किया, तो आपके है ही कोई नहीं, आता ही कोई नहीं है, गम कोई बीमारी नहीं बताई, आती कोई नहीं है, तो क्या नहीं आती? सबको आती है, सबको होती है, लेकिन महसूस करने की बात है। कुछ लोग शोर मचाते रहते हैं, जुकाम हो जाए ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया, तूफान आ गया घर में, और किसी के हो सकता है कि पेट में क्या किडनीज में दर्द हो, वो पी जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे गम भी कम हो जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, कहते हैं कि हजरत याकूब को इस सबर पर अल्लाह ने उन शहीदों का सवाब दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो सबर करेगा उसको भी ऐसा ही अजर मिलेगा। यानी इकबाल मिलते हैं और कभी सबर जाया नहीं जाता, ये जहन में रखिए। फिर लोग गलत मशवरे दे देते हैं, हमारे दुख सुनते हैं ना, फिर कहते हैं अच्छा तुम किससे काम हो, तुम भी जरा खूब बोलना, तुम भी करना। जब लोग आपको गलत मशवरे देंगे, बाज दफा आप अच्छे भले होते हैं, दूसरों की बातों में आके बिगड़ जाते हैं, और सारी उसका सारा उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। घर वाले कहेंगे आज तुम्हें किसने पट्टी पढ़ाई है, तुम तो ऐसी नहीं थी। तो अल्लाह ताला हमें अपने दुखों को, गमों को, तकलीफों को बचाने वाला बना दे। एक आखिरी बात के दो खूंट अल्लाह को बड़े प्यारे लगते हैं, एक वो जो मुसीबत पर इंसान सब्र से भरे, और एक वो गुस्सा जिस गुस्से को इंसान गुस्सा आने पे बर्दाश्त कर सके। अल्लाह ताला हमें इसी की तौफीक अता फरमाए। अगले सबक पे चलते हैं, आज आखिरी सबक है। बड़ा उदास था मेरा दिल, जिस तरह सूरह यूसुफ के शुरू होने की खुशी थी, आज सूरत के पूरा होने का यानी दुख तो नहीं कहूंगी, दुख तो करना ही नहीं है, लेकिन दिल बहरहाल उदास है कि आज सूरत का आखिरी सबक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इससे पहले कि ये सबक पूरा हो, हम इस सूरत से सारे सबक लेने वाले बन चुके हों, और हमारी जिंदगी में इस पर अमल भी आ जाए।